ओम शांति। हंसवाहिनी वीणा वादिनी विद्या की देवी सरस्वती का वरदान जिन्हें स्वयं भगवान ने दिया है, ऐसी ज्ञान की मूरत आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाल्यकाल से ही दीदी इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। 1969 में अपनी बीएससी की एग्जाम देकर आप मधुबन आए और अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आरंभ में आपने राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि देश और विदेश की धरनी पर सेवा हेतु गए और सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने, बाबा के बिछड़े हुए बच्चों को बाबा से मिलाने के निमित्त बने और 1976 से आप मधुबन हेडक्वार्टर में रहना आरंभ किया। 76 से आज दिन तक इस मधुबन धरनी में रहकर आप तीनों ही कॉम्प्लेक्स में देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 75 से भी अधिक देशों का भ्रमण करके आपने जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचाया है। वर्तमान में आप हमारे राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं और मधुबन के भट्टियों के कोऑर्डिनेटर हैं। मधुबन में चलने वाले विदेशी भाई बहनों के कार्यक्रमों के भी आप कोऑर्डिनेटर हैं और इसके साथ साथ इंटरनेशनल इंटरप्रेटर भी हैं। नेशनल इंटरनेशनल जो भी प्रोग्राम्स मधुबन में होते हैं सब में आप पार्टिसिपेट करते हैं और साथ साथ यहाँ पर जो आपने रहकर मम्मा बाबा और दादियों की पालना ली है और अब जब वो दादियाँ मम्मा बाबा सब आगे की यात्रा पर निकल पड़े हैं तो उनका यह मधुबन बेहद घर में रहकर उनसे जो पालना ली है उसका रिटर्न यहाँ आए हुए हर ब्राह्मण भाई को वो पालना देकर दे रहे हैं। तो आज हम उनसे सुनेंगे निश्चय बुद्धि विजयंती। भट्टी का लक्ष्य तो हमारा है बाप समान बनना है, बाप संपूर्ण बनना है और संपन्नता की ओर बढ़ना है, लेकिन बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करते हुए वहां पहुंचना होता है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती इस पर मार्गदर्शन देते हुए भट्टी का लक्ष्य हमें स्पष्ट करेंगे आदरणीय दीदी जी।
आप भी परिचय दो अपना।
इस शरीर का नाम इंदिरा बहन है। 1987 में ज्ञान में आए और 1998 से समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की। आरंभ के 5 वर्ष ज्ञान सरोवर स्पार्क ऑफिस में सेवाएं दी, जहां पर मनोबल एवं मनसा सेवा नाम की जो इतनी मोटी पुस्तक है जो लिटरेचर में सेल होती है, बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया उस पुस्तक को कंपोज करने के लिए। और उसके बाद चूंकि हम नागपुर सब झोन से निकले हैं तो नागपुर सेवा केंद्र पर रहने का अवसर मिला और चूंकि हम स्पार्क से जुड़े थे, मतलब रमेश भाई उषा दीदी से जुड़े थे, नागपुर के बाद गामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का अवसर मिला और शुरुआत तो हेडक्वार्टर से ही की थी। तो गाम देवी के बाद पुनः हेडक्वार्टर में अवसर मिला वर्ष 2009 में, निमित्त बने हमारे शीलू दीदी जी। तो वर्तमान में हम उनकी ऑफिस, ग्लोबल ऑफिस में बैठकर उनकी जो सेवाएं हैं उसमें अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि है, जहाँ ब्रह्मा बाप, मम्मा, सब दादियों ने बहुत तपस्या की है। तो सबकी तरफ से, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से और हमारी तरफ से भी, आप सभी दिल्ली निवासी भाई बहनों का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दिल्ली तो बाबा की दिल है, हा? सदा ही इस दिल में बसने वाले हो। सोनीपत भी कहेंगे दिल्ली से ही संबंधित है, वो भाई कौन है जो दिल, जो सोनीपत संभालते हैं आप? अच्छा अच्छा हमारे जगदीश भाई ने बहुत ही बड़ी लगन से उस स्थान को आगे बढ़ाया और अभी वहाँ से भाई बहने आए हैं। तो बहुत खुशी हुई आप सब से मिलकर। दिल्ली में तो कभी बहुत गर्मी होती है, कभी ओले पड़ते हैं, कभी बारिश पड़ती है, मौसम तो बदलता ही रहता है, लेकिन मधुबन तो मधुबन है। यहाँ तो इस समय हम बिल्कुल जैसे बाहरी मौसम अनुभव करते हैं। हम भी कभी बाहर जाते हैं, फिर मई जून के महीने में वापस जब मधुबन आते हैं, चारों ओर गर्मी के कारण फर्क तो पड़ता है, और जब मधुबन आते हैं तो लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। मौसम यहाँ का कितना सुहावना है। तो ऐसे मौके पर आप सभी यहाँ आए हो योग तपस्या भट्टी में भाग लेने। तो आप सभी को ऐसी भट्टी में निमंत्रण मिला, आपने सहर्ष स्वीकार किया। कुछ भाई बहनें तो जिनका नाम होगा वो एन मौके पर नहीं आ पाए होंगे, और जिनका नाम नहीं था वो आ गए, और हम तो कहते हैं जो पहुंच गए वो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। तो अपने लिए ताली बजाओ। तो लक्ष्य तो हमें बहुत ऊंचा बाबा ने दिया है, हमें बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, फिर फरिश्ता बनना है, फिर वापस घर जाना है, और फिर देवता बन के आना है। अब इतना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दिया है, जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम सभी ब्राह्मण बच्चे तो इस यात्रा में अग्रसर है ही, लेकिन बाबा ने जैसे अपनी पहचान दी है, तो अपनी पहचान के साथ साथ जो दुश्मन है हमारा माया रावण, उसकी भी पहचान दी है। आज भी बाबा ने कहा सबसे पुराना दुश्मन तुम्हारा ये रावण है, और अंत में जब ये रावण माया देखता है, देखती है कि ये भगवान के बच्चे कितना भगवान पर फिदा है, इतने पक्के निश्चय बुद्धि हैं, तो वो अपना रूप बदल कर कई रूपों में आती है, भगवान का रूप भी धारण करके आती है और बच्चे मून जाते हैं। तो माया अंत तक, बाबा कहते हैं, छोड़ेगी नहीं, अंत तक माया पछाड़ती रहेगी, लेकिन जो निश्चय बुद्धि हैं, अंगद मिसल हैं, जो हिलने वाले नहीं हैं, वो तो विजयी बनते ही हैं। इसलिए उस मंजिल तक पहुंचने के लिए निश्चय रूपी कदम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि निश्चय को ही हिलाती है माया। और बाबा ने चार प्रकार का निश्चय बताया है, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और ईश्वरीय परिवार में निश्चय। और कई बार इस निश्चय में हम डावाडोल हो जाते हैं। हर मुरली में बाबा हम बच्चों को कितना स्वमान देते हैं, कोई न कोई ऐसा विशेष टाइटल देते हैं, लेकिन हम उस टाइटल का पहले कितना निश्चय रखते हैं कि सचमुच हम हैं। जैसे कल भी बाबा ने कहा होली हंस हो, तो क्या सचमुच हम अपने आप को होली हंस देखते हैं? हंस कितना पवित्र होता है, सफेद पवित्रता की निशानी है, क्षीर और नीर को अलग करता है, कंकर फेंक कर मोती चुकता है, तो परक शक्ति इतनी उसमें स्ट्रांग है। क्या हम उस प्रकार वो होली हंस है? क्योंकि ये निश्चय अगर हमारा पक्का नहीं है तो फिर वो हंस के गुण भी कहाँ से आएंगे? हाँ? बाबा हमें कहते तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, और हम बच्चे कहे नहीं बाबा हम तो कमजोर है। तो इतना बड़ा स्वमान बाबा हमें देते हैं, पर हम अपने आप को कमजोर समझेंगे तो उस स्वमान का हम पूरा लाभ नहीं ले सकेंगे। ऐसे नहीं बाबा नहीं जानते हैं, जानते हैं बाबा। और हो सकता है कोई इतने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में न भी हो, लेकिन बाबा हमें जो स्वमान देते हैं उस स्वमान के आधार से वो शक्ति भी देते हैं। मैं कई बार ये मिसाल देती हूँ कि एक बार अव्यक्त बाप दादा किसी से मिल रहे थे, तब तो पर्सनल मिलते थे बाप दादा से, तो बाबा ने उनसे पूछा कि क्या आप अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? हाँ, बाबा पूछते रहते हैं ये प्रश्न। तो उसने, उस भाई ने एकदम ब्लंटली कह दिया नहीं। हाँ, नहीं, एकदम सिर ना किया, नहीं। अब नहीं तो कौन ऐसे बाबा के सामने कहेगा, लेकिन उसने कह दिया नहीं। लेकिन बाबा ने उसको कैसे मनवाया कि वो है? तो बाबा ने पूछा, अच्छा आप कौन हो? तो उसने कहा मैं आत्मा हूँ। फिर बाबा ने पूछा आप किसकी संतान हो? तो कहा शिव बाबा की संतान हूँ। हाँ, ये तो निश्चय था, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ। फिर बाबा ने कहा अच्छा शिव बाबा सर्वशक्तिवान है? तो बोला है, वो भी निश्चय है सर्वशक्तिवान है, और आप उसके बच्चे हो। तो अगर बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चे कौन? अब बेचारा चुप हो गया, क्योंकि उसने तो बाबा को कहा मैं नहीं हूं। तो बाबा ने कहा कि अगर बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चा तो जरूर मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना। तो बाबा हमको उस नजर से देखते हैं, हम अपने आप को उस नजर से देखते हैं, क्योंकि अगर हम ही अपने में संशय लाएंगे और बाबा का हमारे में निश्चय है, तो फिर वो संशय हमारा हमें कहाँ पहुंचाएगा। इसलिए निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती जो बाबा कहते हैं, ये हमारा बहुत ही बड़ा बेसिक फाउंडेशन है। हर साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली में बाबा हमको कोई न कोई टाइटल देते हैं। कभी बाबा हमें कहते हैं तुम खुदाई खिदमतगार हो, खुदा की सेवा में हो, भगवान की सेवा में हो। तो क्या सचमुच हम ये महसूस करते हैं कि भगवान ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उनका कार्य हमें सौंपा है, इस विश्व को बदलने का कार्य, हमें इस कलयुग को बदलकर सतयुग बनाना है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने हमें दी है, तो क्या हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं या अपने ही उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं? तो बाबा हमें ये क्यों स्वमान देते हैं? ताकि आत्मा अपने आप को इतना मजबूत करे, और अगर वो कमजोरी है तो परिवर्तन करे। मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ कि कैसे जब 93 में सबसे पहले टीवी पर लेक्चर्स हमारे आए, क्योंकि दूरदर्शन तो था लेकिन दूरदर्शन में ब्रह्मा कुमारियों को मौका नहीं मिलता था स्पीच देने का या कार्यक्रम देने का, क्योंकि गवर्नमेंट चैनल है। लेकिन प्राइवेट चैनल्स शुरू हुए 92-93 से ही, और सबसे पहले जी टीवी आया, तो उस चैनल में ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण मिला। तो कैसे बाबा ने मुझे सबसे पहले दादी जी ने कहा कि आप जाओ, तो वो भी देखो कैसे बाबा की प्रेरणा थी। मैं नागार्जुना फर्टिलाइजर्स गई थी हैदराबाद में, वहाँ पर प्रोग्राम था उनकी कंपनी में, और उनकी कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स थे वहाँ उनका कार्यक्रम किया, फिर वो सब माउंट आबू आए थे, तो माउंट आबू में बाबा से मिले। तो जब बाबा से मिले, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानते थे, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती थी, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रही थी। बाबा के जो महावाक्य उनके प्रति थे, वरदान दे रहे थे, क्योंकि वो सब जैसे ज्ञान को समझने लगे, पूरा कोर्स किया उन्होंने। वहाँ मैं उनके ही दफ्तर में या कंपनी में ही जा कर के उनको कोर्स कराया था, और वो आए थे मधुबन। तो जब सबका वो ट्रांसलेशन पूरा हुआ, और फिर मैं गई बाबा के पास, क्योंकि बाबा सबको टोली भी दे रहे थे, तो मैं बाबा के पास गई और ऐसे हाथ किया, तो बाबा ने इतनी पावरफुल दृष्टि दी मुझे, और मेरे हाथ में टोली पकड़ाई, और जोर से हाथ को जैसे नहीं पकड़ते हैं टोली रख करके, और बाबा ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, बहुत सुंदर वरदान दिया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जिबान पर है। ये बाबा ने उस समय मुझे वरदान दिया। अब बाबा ने वरदान तो दे दिया, और मैं टोली लेकर के आ गई। लेकिन उसके बाद अब देखिए कैसे रिएक्शन हुआ, जैसे मैं, क्योंकि माइक पर बाबा ने बोला, ओम शांति भवन की बात है ये, तो माइक पर बाबा ने बोला और सब ने सुना, तो पहले तो हमको चिढ़ाने लगे भाई बहन मधुबन के कि वाह वाह, बाबा ने तो आपको सरस्वती का टाइटल दिया, अब संगम युग पर सरस्वती हो तो भविष्य में लक्ष्मी जरूर बनोगी, क्योंकि सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है। मतलब ऐसे मजाक भी करते, हंसी जैसे लाइटली लिया, लेकिन मैंने लाइटली नहीं लिया। मैंने कहा अगर बाबा ने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया है, उसके पीछे जरूर कोई राज होगा। तो क्या राज होगा? बाबा को मुझसे कोई बहुत बड़ी सेवा करवानी है। अब क्या सेवा करवानी है? तो मैं बाबा के कमरे में गई और बाबा को कहा, बाबा आपने मुझे ऐसा बड़ा वरदान दिया, आप मुझसे क्या सेवा करवाना चाहते हैं? बाबा मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तो फिर मुझे संकल्प आया, बाबा ने मुझे कहा है कि सरस्वती आपकी जिबान पर है, तो इस मुख से, इस जिबान से मुझे ऐसे कोई बोल नहीं बोलने हैं जो सरस्वती के विरुद्ध हो, यानी केवल ज्ञान के ही बोल बोलने हैं, ज्ञान के सिवाय और कुछ नहीं, क्योंकि सरस्वती माना ज्ञान की देवी, तो सरस्वती जिबान पर माना ज्ञान के सिवा और कुछ मुझे बोलना नहीं है। तो इतना मैंने अपने अंदर परिवर्तन किया कि मैं अपनी जिबान को कैसे कंट्रोल करूं, कैसे, और कुछ जो अपशब्द तो चलो नहीं कहते थे, लेकिन कई ऐसी बातें संसार की बहुत कुछ होता है तो कई बार मुख से निकल भी आता है, लेकिन अपने आप पर उतना कंट्रोल किया। वैसे भी बाबा कहते हैं तुम राजा हो, आप बच्चे कैसे स्वराज्य अधिकारी हो, तो इंद्रियों पर तो विजय चाहिए ही। तो फिर मैंने अपने ऊपर इतना ध्यान रखा, बाबा हमको किस नजर से देखते हैं, क्या हम अपने आप को उस नजर से देखते हैं? आपको जैसे बताया मैं ट्रांसलेशन करती हूँ, क्योंकि जब अव्यक्त बाप दादा आते थे, अभी भी प्रोग्राम तो चलते हैं, तो सारे विश्व में बाबा की मुरली जाती है उसी समय लाइव जो मधुबन में चलती है, और हम उस समय ट्रांसलेशन करते होते हैं, तो जो अव्यक्त मुरली भी जो चलती है उसमें जो पहली लाइन है उसमें बाबा के कितने टाइटल्स बच्चों के प्रति है, बाबा किन बच्चों को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, हाँ, तो बहुत सारे उसमें टाइटल्स बाबा देते हैं, तो वो मुझे ट्रांसलेशन करना पड़ता इंग्लिश में। तो अब इंग्लिश और हिंदी में ये अंतर है कि हिंदी में जो वर्ब आता है क्रिया वो लास्ट में आती है, बाबा डैश 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 बच्चों को देख रहे हैं, तो देख रहे हैं वो आखिर में आएगा, या मिल रहे हैं, या जो बाबा को कहना है वो आखिर में आता है, और जो टाइटल्स है वो बाबा के पहले आते हैं। अब इंग्लिश में इसका ऑपोजिट है, बाबा इज लुकिंग एट, तो लुकिंग एट वो टाइट वो जो वर्ब है वो पहले आता है, तो मुझे इंतजार करना पड़ता था कि बाबा क्या कहेंगे, लास्ट में देख रहे हैं, मिल रहे हैं, हाँ? तो इसलिए पूरा लिखना पड़ता था, और जैसे मैं लिखती जाती थी मेरा नशा चढ़ता जाता था, देखो बाबा हमको किस नजर से देख रहे हैं, और सचमुच हम ऐसे हैं, तो नशा भी चढ़ता था और उसका वो स्थिति भी बन जाती थी, और फिर ट्रांसलेशन तो करते ही थे, और जैसे उसमें हम ऐसे जैसे लय हो जाते थे बाबा की जैसे वाणी चलती थी, तो मेरी वो जो ट्रांसलेशन भी होती थी वो भी उसी अनुसार ही चलती थी, बिल्कुल जैसे बाबा में खोए हुए और हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि बाबा इतना स्लो है तो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट कर लूँ, नहीं, बाबा के समान। तो सचमुच ये भी एक विशेषता बाबा ने हमें दी, तो हम देखते हैं कि स्व के प्रति हम कितना मान में रहते हैं, जिसको स्वमान कहते हैं। कई भाई बहने हैं जो स्वमान और अभिमान के अंतर को नहीं समझते हैं। पूछते भी हैं कि बहन जी स्वमान और अभिमान में क्या फर्क है, कैसे पता चले ये स्वमान है या अभिमान है, तो इसको स्वाभिमान कह देते हैं। स्वमान और अभिमान में अंतर को न समझने के कारण स्वाभिमान दोनों को जोड़ देते हैं, स्वाभिमान। लेकिन क्या है स्वमान, बाबा स्वाभिमान नहीं कहते हैं, बाबा दोनों को अलग करते हैं, स्वमान और अभिमान। तो अभिमान किसको कहेंगे और स्वमान किसको कहेंगे, तो बाबा कैसे अंतर करते हैं कि कोई भी भौतिक उपलब्धियां, भौतिक प्राप्तियां, फिर चाहे वो टैलेंट हो, चाहे हमारी कलाएं हो, हमारी विशेषताएं हो, या कोई भी स्थूल भी प्राप्ति हो, उसका अगर अभिमान है अवश्य वो अभिमान है, क्योंकि अगर मेरे अंदर कोई विशेषता भी है, हाँ बाबा वो भी कहते वो विशेषता कैसे आई, किसने दी, किसने दी, बाबा ने दी। अगर बाबा के नहीं बनते होते तो विशेषता आती कहाँ, आती पता भी नहीं था, लेकिन बाबा के बने और वो विशेषता का अनुभव किया, और जैसे अनुभव किया, महसूस होने लगा कि ये देखो, ये बाबा की देन है। तो बाबा कहते कभी भी उसका अभिमान नहीं आना चाहिए, ये तो मेरी विशेषता है, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो बाबा कहते ये अभिमान हो जाएगा। परंतु स्वमान किसको कहते हैं? स्वमान माना आत्मा का मान, स्व का मान। जब बाबा कहते तुम बच्चे शांत स्वरूप हो, शांति तो तुम्हारे गले का हार है। अब इतना बड़ा ये स्वमान है कि कोई भी मेरी शांति छीन नहीं सकता है, चाहे कितनी भी कोशिश करे, मेरी मुझे गाली दे, ग्लानी करे, कुछ भी करे, लेकिन शांति का जो मेरा गुण है वो कोई छीन नहीं सकता। ये मेरा निजी स्वभाव है। जैसे हम मिसाल देते हैं ना कि जैसे पांच तत्व है, हर तत्व का अपना अपना स्वभाव है, उसी को नेचर कहते हैं, स्वभाव है। पानी का स्वभाव है शीतलता, कितना भी उसको गर्म कर दो, लेकिन गर्म हुआ फिर वापस रख दो तो ठंडा हो जाएगा, उसका स्वभाव तो शीतलता है ना। अग्नि का स्वभाव तेज है, कितना भी आप उसको छोड़ दो, लेकिन फिर वो धीरे धीरे मान लो वो ठंडी भी हो जाए, फिर अग्नि का रहे। अग्नि का काम ही है जलाना, पकाना, जो कुछ भी हम कहते हैं। तो अग्नि तो तेज होती है, नहीं तो अग्नि कहाँ है। इसलिए हर एक तत्व का जैसे अपना गुण है, उसी प्रकार आत्मा के जो गुण हैं उनका स्वमान रखना ये सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता है, जिसको आज बाबा जी का अंगद, इतना स्वमान था। और उस स्वमान में रावण ने कितना उसको हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला नहीं। अब उस स्वमान में श्री राम का भी उसको मान था, किसने मुझे भेजा है। इस पर एक हंसी की बात सुनाते, कहीं मैं पढ़ रही थी कि अंगद ने जब ऐसे पांव रखा और रावण को कहा हिला के तो देखो, तो रावण ने बहुत कोशिश की और रावण का वो सिंघा, वो जो ये मुकुट था वो भी गिर गया, उसको तो लात मारा और वो राम के पास पहुंच गया, मतलब इतना स्ट्रांग था। तो रावण तो उनको जीत नहीं सका। तो जैसे ही वो मतलब वापस गया अपने राम के पास, तो किसी ने उसको हंसी में कहा, एक जोक है, किसी ने कहा कि अरे अंगद, अगर रावण तुम्हारी टांग हिला सका होता तो क्या होता। अगर रावण तो वो शक्तिशाली था, वो आपकी टांग हिला सकता था, अगर हिला सका तो क्या होता। तो उसने कहा मुझे क्या चिंता है, वो तो राम की सीता की बात है ना, वो तो राम जाने, उसको उसका काम है ना ताकत देना मुझे, क्योंकि उसकी सीता के लिए तो मैं गया था कि सीता को छोड़ो। तो अगर भगवान राम को मुझे सीता लानी है मुझे, तो राम को ही मुझे शक्ति देनी है, ये थोड़ी कि मेरी अपनी शक्ति है, तो राम ने शक्ति दी है। माना उसको कितना स्वमान तो था ही, लेकिन उस परमात्मा का भी कितना मान था कि कहीं राम का नाम बदनाम न हो, क्योंकि मैं उनके कार्य के लिए आया हूँ, सीता को छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो कहने का भाव है कि एक है स्व का मान, वो आत्मा की शक्ति है क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है, मैं आत्मा कमजोर नहीं हूँ, इसलिए भी कमजोर नहीं हूँ क्योंकि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, और वो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो मैं भी इतनी शक्ति स्वरूप हूँ। जैसे आज भी बाबा ने कल की जो अव्यक्त मुरली थी, बाबा ने कहा कि मुश्किल शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं है, असंभव शब्द तो है ही नहीं, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट इन आवर डिक्शनरी, लेकिन मुश्किल, मुश्किल शब्द भी नहीं है। असंभव तो छोड़ो, नहीं तो कोई कहेगा ठीक है असंभव तो नहीं है पर मुश्किल है, मुश्किल थोड़ा हल्का शब्द है, असंभव तो बहुत बड़ी चीज है, पर मुश्किल शब्द भी नहीं है क्योंकि कौन हमारे साथ है। तो वो स्वमान की भी शक्ति तब अनुभव होती है जब शिव बाबा की हमें शक्ति मिलती है। कौन मेरे साथ है? हमारी दादी जानकी जी कितना नशे से कहती थी ना, याद है ना, 3 बार ओम शांति कह करके क्या कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन, बड़े नशे से कहती थी। फिर तीसरा जो था ओम शांति का, फिर अलग अलग अर्थ देती थी, लेकिन मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, इतना नशे से दादी कहती थी। शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन वो आत्मा की शक्ति थी। तो क्या हम अपने आप से पूछे, उतना स्वमान मेरे में है? जो बाबा हमें जिस नजर से देखते हैं, क्या हम भी अपने आप को उस नजर से देखते हैं? तो रोज की मुरली से जो स्वमान मिलता है, उस स्वमान को अंडरलाइन करके उसको अपने जीवन में लाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो, तभी तो हम संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। जैसे बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न बनना है, तो सर्वगुण संपन्न कैसे बनेंगे, एक 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 गुण कैसे आएगा? तो बाबा ने बहुत सहज युक्ति बता दी, सर्वगुण संपन्न बनना है तो एक एक से गुण लो। अब इतने सारे भाई बहने एक एक से गुण लो तो सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। एक एक गुण के लिए अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि ये मुझे चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। देखो इसके अंदर ये गुण है, क्योंकि गुण सिखाए नहीं जाते हैं, गुणों को पकड़ा जाता है। वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट बट दे आर कॉट, ऐसे कहते हैं। तो उनको पकड़ा जाता है, माना उनको उस प्रेरणा लेकर अपने अंदर ग्रहण किया जाता है कि देखो ये बहन कितनी हर्षित रहती है, सदा हर्षित रहती है, तो क्या मैं भी ऐसे हर्षित हूँ, तो मुझे भी ऐसे हर्षित रहना है। ये बहन कितना प्यार से बोलती है, कितनी मिठास है इनके वाणी में, क्या मेरे अंदर भी ऐसी मिठास है, तो मुझे ऐसी मिठास लानी है। तो ये कोई मुझे सिखाएगा नहीं, मुझे कोई सिखाएगा नहीं, लेकिन ये मैं खुद अपने अंदर अनुभव करूं, डिवेलप करूं, तो क्यों नहीं होगा, सब कुछ मेरे पास ही है। तो एक है ये स्वमान। तो दुनियावी जो भी प्राप्तियां हैं वो तो बाबा कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो, जब बाबा कहते हैं ना समर्पित हो जाओ, तो ये सब बाबा को समर्पित है, मेरा कुछ नहीं है, मैं आत्मा ये सब चीजें तो लाई नहीं और न ये ले जाऊंगे। हम दुनिया वालों को भी तो यही कहते हैं ना, जिस मकान में हम रहते हैं वो हमारा कहाँ है, हमारे से पहले कोई और रहता था, अब हम रहते हैं, हम चले जाएंगे तो कोई और रहेगा, है ना, मकान खाली थोड़ी छोड़ेंगे, कोई और रहेगा। तो इसीलिए ये तो ये शरीर भी एक मकान ही तो है जिसमें आत्मा रहती है, ये भी मेरा कहाँ है। इसलिए बाबा कहते जब 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 मैं शब्द कहते हो तो उस समय क्या याद रखो, क्या याद रखो, मैं आत्मा। ये इतना बड़ा नशा है, इतना बड़ा स्वमान है, और वो कैसी आत्मा वो भी जरूर ऐड करो। इसलिए इतने टाइटल्स बाबा हम बच्चों को देते हैं, और उस अनुसार बाबा कहते आपके कर्तव्य हो। तो पूछो अपने आप से वो कर्तव्य है, क्योंकि जब तक उसका स्वरूप का अनुभव नहीं होगा तब तक वो कर्तव्य भी नहीं हो सकेगा। इसलिए पहले तो निश्चय चाहिए, फिर निश्चय के बाद नशा चाहिए, तब निशाने तक पहुंचेंगे। बिना निश्चय के नशा भी नहीं आता है। और बाबा कहते सब नशों में नुकसान। कल भी बताया ना बाप, परसों थी मुरली, क्या बाबा ने कहा वो मिलिट्री वाले जाते हैं तो उनको नशा पिलाते, मरना और मारना और कुछ सोचते नहीं है, और वो नशा पीते अपने दुख दर्द को भुलाने के लिए। लेकिन दुख दर्द क्या भूलते हैं, जो अपने आप में आपाई खो लेते हैं, नाली में पड़ा होगा सोचेगा मैं तो करोड़पति हूं। तो इसीलिए उन सब नशों में नुकसान सिवाय एक नारायणी नशे में, मैं कौन और मेरा कौन और मुझे क्या करना है, क्या बनना है। तो जब इस स्वमान में है इतना निश्चय हमें, तो कोई ये निश्चय डगमग नहीं कर सकता है। चाहे कितना भी कोशिश करे, जैसे छोटे बच्चे को आपने बता दिया आपका नाम रमेश है, अब कोई उसको कहेगा तुम रमेश नहीं हो, तुम तो महेश हो, कहता नहीं हाँ मैं कौन हूँ, हाँ रमेश ही हूँ, तो उसको पक्का किया है ना तुम रमेश ही हो, ऐसे नहीं पता नहीं रमेश हूँ या महेश हूँ, नहीं पापा ने कहा है तुम रमेश हो, तुम्हारा नाम रमेश है, तो मैं महेश नहीं हूँ, नहीं हाँ सीधा कहेगा, नशा है ना वो, तो स्थूल नाम है, चलो माँ बाप ने रखा। अब ये किसने मुझे कहा, ये फिर और निश्चय, ये और निश्चय, इसलिए कहते हैं ना सत्यमेव जयते, तो निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय में विजय है, निश्चय से नशा चढ़ता है, नशे से निशाने तक पहुंचते हैं, और फिर है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। तो ये कौन मुझे कह रहा है, जैसे गीता में आता है कि अर्जुन को भगवान ने कितना ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया, 18 अध्याय सब ज्ञान ही है, लेकिन फिर भी अर्जुन सदा ही प्रश्न 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 करता रहा, भगवान ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ये मन कैसे लगेगा, मन तो ये है, मारू कैसे, आदि आदि प्रश्न ही प्रश्न। भगवान ने उसको कहा कि तुम इनको मारो, अब वो कह कैसे मारू, कैसे मारू, अपने में संशय था कैसे मारू, ये मेरे मामा चाचा काका मैं इनको कैसे मारू, ये मेरे भाई इनके साथ मैं पला बड़ा हुआ मैं मारू कैसे। अब भगवान ने कहा इनको सब मरा हुआ देखो, ये सब मरे पड़े हैं, मरा हुआ देखो, उनको शमशान घाट दिखा दिया, एकदम सब मरे पड़े हैं, सब डेड, तो इसको और दुख हो गया, ये सब मर जाएंगे और मैं निमित्त बनूंगा, मुझे ऐसा काम नहीं करना है। अब कौन कह रहा है वो नहीं सोचा, लेकिन मैं कैसे करूं, मैं तो अभिमान में था ना और मोह के वश था, सारे विकार थे उसमें, वो भी था काम भी था सब कुछ था, तो भगवान मुझे कह रहा है वो नहीं समझा, इसलिए प्रश्न कर रहा है कैसे मारूं, कैसे इनको मरा हुआ देखूं, कैसे इनको आत्मा देखूं, इतने जीते जागते आत्मा तो दिखाई नहीं देती है। फिर भगवान ने दूसरा कदम उठाया उसको निश्चय कराने लिए कि हाँ तुमको ये काम करना है, क्या कहा, अर्जुन तुम कौन हो, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, आप प्राण जाए पर प्रण न जाए, भले शरीर छूट जाए धर्त पड़िए धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए, क्षत्रिय एक बात जो मुख से कह देता है वो करता है, तो तुम क्षत्रिय हो, इसलिए अपना धर्म पालन करो और युद्ध करो। उसने कहा कि नहीं मैं क्षत्रिय तो हूं लेकिन निश्चय नहीं। तो उसमें भी फेल हो गया। फिर तीसरा कदम भगवान ने क्या उठाया, तीसरा कदम उठाया कि अगर तुम इस स्वर्ग में इस युद्ध में विजयी बनोगे तो तुम स्वर्ग का अधिकार प्राप्त करोगे, तुम स्वर्ग का मालिक बनोगे। तो उसने कहा मुझे ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं, ऐसा स्वर्ग क्या लेना जो इनको मार करके स्वर्ग लो, तो ऐसा मैं पाप क्यों करूं, वो स्वर्ग क्या मिलेगा, इतना पाप करूंगा, मतलब भगवान उसको जो कह रहे हैं वो उसका अपना अभिमान दिखा रहा है, अपने शास्त्रों का ज्ञान सुना रहा है, जो भगवान के बिल्कुल ऑपोजिट बातें वो कह रहा है और भगवान की बातें तो समझता ही नहीं है। तो फिर भगवान ने कहा अच्छा मानो तुम स्वर्ग का मालिक नहीं बनोगे, पर इस युद्ध में अगर तुम हार भी गए तो भी तुम स्वर्ग में जरूर आओगे, लेकिन वो स्वर्ग की भी उसको कोई इच्छा नहीं थी, कुछ भी नहीं। फिर जब भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल नहीं समझ रहा है, तब विराट रूप दिखाया, ये तुमको कौन कह रहा है पहले ये तो सोचो, विराट रूप में तो बहुत कुछ बताया है। और जब विराट रूप का साक्षात्कार कराया तब अर्जुन को लगा ये कोई मेरा मित्र नहीं मुझे कह रहा था, ये स्वयं भगवान मुझे कह रहा था, और फिर उसकी आंख खुली, भगवान मुझे ये बात कह रहा है, तो बस घुटने टेक लिए, हाथ जोड़ करके कहा अब मेरा मोह नष्ट हुआ है, अब मुझे स्मृति आ गई है, मुझे क्या करना है, आप जो कहोगे मैं करने लिए तैयार हूं। पर कब ये स्वीकार किया, कब स्वीकार किया, जब उसको विराट रूप का साक्षात्कार हुआ। तो हम भी संशयात्मक बुद्धि के थे, बाबा कहते तो हैं लेकिन पता नहीं, पता नहीं विनाश होगा नहीं होगा, पहले तो कहा 76 में होगा, फिर कहा 2000 में होगा, फिर कहा ये होगा वो होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं। अरे कौन कह रहा है, बाबा ने तो विनाश की बातें तो शुरू से ही कह दी थी। 1936-37 में जैसे बाबा के बच्चे आए, सरेंडर हुए, उनको विनाश का साक्षात्कार हुआ, जैसे ब्रह्मा बाबा को हुआ उनको भी हुआ, और उस विनाश का साक्षात्कार करके धक से स्वाहा हो गए। और बाबा उनको कहते अगली दिवाली नहीं आएगी, अगली दिवाली नहीं आएगी, और 86 दिवालियां हो गई। अगली दिवाली माना अगला साल नहीं आएगा ना, अगली दिवाली, और कितनी दिवालियां बीत गई, 86 है, 86 हम अभी मनाएंगे। लेकिन अगर बाबा उस समय ऐसे नहीं कहते होते तो ये यज्ञ स्थापित होता, आप सोचो, इतने सब आते स्वाहा होते। लेकिन ये बाबा की युक्ति जरूर थी, ब्रह्मा बाबा ने भी खुद जब विनाश का साक्षात्कार किया तुरंत धक से, कैसे बाबा के बन गए, उनको तो सब पत्थर दिखाई देने लगे, हीरे मोती सब, विनाश का साक्षात्कार किया, ये सब खत्म होने वाला है। अर्जुन को भी यही साक्षात्कार ही कराए ना, पर उनको वैराग्य नहीं आया और ही मोह जागृत हुआ। तो इसीलिए बाबा कहते ये कौन तुम्हें कह रहा है। फिर कई बार जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो बाबा की मुरली में कितना प्यार भरा हुआ है, वो प्यार को हम कहाँ समझते हैं, ये भी हम अपने आप से पूछें। सचमुच समझते हैं कि बाबा की मुरली के एक एक महावाक्य में प्यार भरा हुआ है, कितना प्यार। जो बाबा, पहली बात तो बाबा हमको इतनी ऊंची नजर से देखते हैं, ये प्यार है भगवान का। जानते हैं बाबा कि मेरे बच्चे अभी इतने शक्तिशाली नहीं हैं, तो भी बाबा कहते जरूर हैं, क्योंकि प्यार है ना, जैसे एक माँ होती है, अब बच्चा कमजोर है, पर कमजोर को ये थोड़ी कहेगी तुम तो कमजोर हो, तुम तो नालायक हो, तुम तो बेवकूफ हो, ऐसे कहेगी क्या, क्या कहेगी, क्या कहेगी, बेटा तुम तो बहुत होशियार हो, तुम तो बहुत ताकत वाले हो, तुम तो बहुत ये हो, बहुत कर सकते हो, हाँ बहुत हिम्मत वाले हो, हाँ बच्चे करो करो करो, हाँ। बच्चा हिम्मत नहीं दिखाएगा लेकिन माँ उसमें हिम्मत भरेगी, ये प्यार है। और हिम्मत जैसे भरती है तो मदद भी तो करती है ना, बच्चे को चलना सिखाती है, तो बच्चे को कहेगी बेटा एक पाँव आगे करो, अब बच्चा डरेगा कि गिर जाऊंगा, पर माँ उसका हाथ पकड़ के कहती तुम करो मैं खड़ी हूं करो, पर डरता है बच्चा, चलो माँ ने हाथ से उसका पैर आगे भी किया लेकिन फिर डरेगा, और फिर डरेगा तो फिर नहीं करेगा, फिर माँ कहेगी बेटा मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम नहीं गिरोगे, तो हिम्मत देती जाएगी। और बच्चे ने पहला कदम आगे रखा और देखा कि मैं गिरा नहीं तो हिम्मत आ गई, फिर दूसरा कदम आगे रखा तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। तो भगवान हमको कितना प्यार देते हैं, उस प्यार में ये सारे स्वमान देते हैं, भले वो हम नहीं भी है वो स्वरूप, लेकिन बनना तो है ना, तो लक्ष्य तो बाबा हमें देते हैं ना। फिर बाबा देखते हैं कि ये बच्चे तो फिर भी अलबेले हैं, तो ये नटखट है। बाबा की बातों पर इतना विश्वास तो चलो है, लेकिन कमजोर समझते हैं अपने आप को, बाबा मैं ये नहीं कर सकता हूँ, हाँ बाबा मैंने अपना मुंह काला कर दिया, सीधा ही बोल देते हैं बाबा को, भले सच बताते हैं लेकिन मुंह काला कर दिया तो अभी बाबा क्या करेगा, अपना कर्म है, अपना कर्म का फल आपको तो मिलेगा ही। फिर भी बाबा प्यार करना छोड़ते थोड़ी है, बच्चे अगर अलबेले भी हैं, नटखट भी हैं, चंचल भी हैं, नखरे भी करते हैं, कोई ना कोई बहानेबाजी भी देते हैं, बहाने देते हैं, तो बाबा फिर उनको क्या कहते हैं, बच्चे तुम अगर विजयी बनोगे, माया जीत बनोगे, तो देखो तुमको स्वर्ग का अधिकार देंगे, तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। बाबा कहते हैं ना, विश्व के मालिक बनोगे। जैसे माँ बाप बच्चे को उमंग उत्साह दिलाते हैं, बच्चे पढ़ाई करो, तुम अगर फर्स्ट नंबर आओगे तो तुमको साइकिल लेके देंगे, है ना, प्रलोभन देते हैं कि अगर तुम ये मेहनत करोगे तो तुमको ये दूंगा, पिता कहता है, वायदा करता है। तो शिव बाबा भी वायदा करते हैं, बच्चे तुम अगर माया जीत बनोगे तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, तो विश्व के मालिक बनोगे, इतना नशा चढ़ाते हैं। हम एक मिसाल देती हूँ, हमारे विदेशी भाई बहने आते थे ना, तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रामा करते थे, बड़े सुंदर रमणीक ड्रामा। तो एक ड्रामा उन्होंने किया था कि एक बहन का जन्मदिन था, अब उसके माँ बाप तो सब ज्ञान में चलते थे, अब वो बहन का जन्मदिन था तो सब उसको छोटी छोटी गिफ्ट देने के लिए आए, लेकिन वो छोटी गिफ्ट देख के उनको मज़ा नहीं आता था। फिर पिता लाया, बहुत बड़ी गिफ्ट लाया, तो भी उसको मज़ा नहीं आया, यानी कुछ भी वो लेने को स्वीकार तैयारी नहीं होती थी। आखिर किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर इसको क्या दें जो इसको खुश करें। तो फिर क्या किया पिता ने, वो कुछ ऐसा बनाया जिसमें सतयुग दिखाया, स्वर्ग दिखाया, वो लक्ष्मी नारायण को ताज वाज, मतलब ये सब दिखाया। तो जब वो लेकर के आया बच्ची को देने के लिए, तब बच्ची कहा, हाँ ये चाहिए मुझे, स्वर्ग का अधिकार चाहिए, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं चाहिए, तो वो हमें चाहिए। तो बाबा हमें छोटी मोटी चीज़ थोड़ी देते हैं, वो पिता तो कहेगा मैं साइकिल लेके दूंगा, मैं तुमको ये दूंगा, तुमको वो दे दूंगा, भगवान क्या प्रलोभन देते हैं। पर ये ऐसे ही प्रलोभन नहीं देते, ये सत्य है, ऐसे नहीं बाबा कहता तो है पता नहीं है, अगर पता नहीं का तो पता ही कट जाएगा। इसीलिए निश्चयात्मक बुद्धि विजयंती, निश्चय बाबा में, ये कौन कह रहा है, भगवान कह रहा है, तो वो तो सत्य ही बोलेगा। और हम भी समझ सकते हैं कि ये कलयुग की दुनिया कहाँ तक चलेगी, लेकिन वो सत्युग ऐसे नहीं आएगा, वो देवताएं इस धरती पर नहीं आ सकेंगे जब तक ये धरती पर सफाई न हो, और हमें ही वो बनना है, तो तैयार तो हमें ही होना है ना, हम ही वो बनेंगे। इसलिए इतना निश्चय हो कि ये भगवान हमको कह रहे हैं। पर फिर भी बाबा देखते हैं कि मेरे बच्चे फिर भी नटखट है, अलबेले हैं, देख भी रहे हैं, इतनी तैयारियां हो रही है, अचानक होगा, बाबा ये भी कहते हैं सब अचानक होगा, इसलिए हर वक्त एवर रेडी रहना है, उस पर बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा तीन शब्द बोलते हैं, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास होगा तभी अंत में एक बाबा के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा, नहीं तो फेल हो जाएंगे। अंत का पेपर केवल एक सेकंड का होगा, हाँ या ना, कोई देहधारी की याद आई फेल। इसलिए उसमें पास होने के लिए सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, उसके लिए एवर रेडी रहना पड़ेगा। बहुत काल का अभ्यास होगा तो एवर रेडी रह सकेंगे, क्योंकि पढ़ाई हमने की है, बच्चा अगर सारा साल पढ़ेगा तो इस सरप्राइज टेस्ट भी अगर मिल जाए तो चिंता नहीं है, वो तैयार है, क्योंकि पढ़ाई तो करता ही रहता है। पर पढ़ाई की नहीं, अचानक सरप्राइज टेस्ट हो गई तो क्या होगा, घबरा जाएगा। तो एवर रेडी भी तब रह सकेगा जब वो बहुत काल का अभ्यास होगा, क्योंकि होना सब अचानक है, कुछ कह के नहीं आएगा पहले। इसीलिए बाबा हम बच्चों को अपना प्यार जताने लिए कितना सुंदर हमें लक्ष्य देते हैं, बच्चे तुम्हें क्या बनना है, मैं क्या देने आया हूँ, मैं छोटी मोटी सौगात थोड़ी दूंगा आपको, बहुत बड़ी सौगात देता हूँ जो कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती है। और फिर भी अगर बच्चे नटखट है, अलबेले हैं, तो फिर तीसरा तरीका प्यार का कौन सा है, बाबा सावधान करते हैं, धर्मराज की याद दिलाते हैं, हर मुरली में बाबा धर्मराज की भी याद दिलाते हैं। बच्चे अगर गफलत की तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। तो कई बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे क्यों कहते हैं, बाबा हमको डरा रहे हैं। बाबा डरा नहीं रहे हैं, बाबा हमें सत्य बता रहे हैं कि सजा खाएंगे, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। हर एक को अपने कर्म का फल तो पाना ही है, तो क्यों गफलत कर रहे हो जबकि ये सब खत्म होना ही है। इसीलिए बाबा हमको इतनी लगन से इतना प्यार दे करके फिर याद दिलाते बच्चे तुम कौन हो। तो फिर खुद में निश्चय, बाप में निश्चय, फिर ड्रामा में निश्चय। ये बहुत बड़ा निश्चय है ड्रामा में, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, हर सीन। तो ड्रामा में निश्चय चार बातों के आधार पर है। ड्रामा में निश्चय एक संकल्प, एक निश्चय है कि ड्रामा में जो कुछ होता है कल्याणकारी है, कुछ भी अकल्याणकारी नहीं है, ये ड्रामा में निश्चय। और दूसरा ड्रामा में निश्चय माना जो कुछ होता है नथिंग न्यू। बाबा तो कहते हैं कुछ भी नया नहीं है, आपने कितनी बार किया है, हर कल्प में किया है। और तीसरी बात ड्रामा की कि जो कुछ होता है वही सही है, वही सही है, ऐसा ही होना चाहिए था। कई बार कहते ऐसे नहीं होता तो ये नहीं होता, ये नहीं होता तो वो नहीं होता, कितनी बातें सोचते हैं। यही तरीका था, यही सही है, ये ड्रामा में निश्चय, इसलिए कोई प्रश्न नहीं। और चौथी बात ड्रामा में निश्चय माना हर दृश्य में कोई राज है, हर दृश्य में जो भी बातें होती उसमें कोई राज है, वो राज हम नहीं जानते इसीलिए प्रश्न उत्पन्न होते हैं, इसलिए दुख उत्पन्न होता है, इसीलिए चिंताएं होती है, इसलिए डर लगता है। ये डरना, चिंता करना, प्रश्न करना, आश्चर्य खाना, उसके विषय में इतना सोचना, बाबा कहते ये क्यों है, क्योंकि ड्रामा में निश्चय नहीं है। और अगर ड्रामा में निश्चय है तो जैसे कल बाबा ने कहा वाई और वॉट नहीं, लेकिन क्या लगाएंगे, डॉट। बस डॉट लग गया तो नो वाई नो वॉट, लेकिन डॉट, ये ड्रामा में निश्चय। इतना पक्का निश्चय हो ड्रामा में जो हम अचल अडोल बन सके, कोई बात में हलचल ना आए, कुछ भी दृश्य हम देखें हमारी स्थिति इतनी अचल हो। और चौथा परिवार में निश्चय। और बाबा जानते हैं, बाबा बताते हैं कि यहीं से राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा तीन कार्य करने आए एक साथ। एक कार्य है, बाबा सतयुग की स्थापना के लिए देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं। तो देवता धर्म की स्थापना करना ये कितनी बड़ी बात है, धर्म की स्थापना। तो धर्म की स्थापना कैसे होती है, पवित्रता के बल से, इसलिए पवित्रता जरूरी है। दूसरा बाबा राज्य स्थापन कर रहे हैं, सतयुगी राज्य जो इस समय राजा ही है नहीं, वो बाबा स्थापन कर रहे हैं। उसके लिए नियम मर्यादाएं जो बाबा हमें देते हैं श्रीमत, ये नियम मर्यादाएं श्रीमत के अंतर्गत आती है, उनका जितना पालन करेंगे उस अनुसार पद मिलेगा, इसलिए बाबा राज्य स्थापन कर रहे हैं। और तीसरा कुल स्थापन कर रही है, कुल दैवी कुल है, अब ये तीन बातें स्थापन करने आए हैं तो हर एक का पार्ट अपना अपना है, इसलिए परिवार में भी कोई प्रश्न नहीं। अच्छा हाँ, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।